एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
See how
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन खुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूं। आए हम आज उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। पिता हमारे मनों को और दिलों को खोल दे, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके और तेरे राह में चलने सके। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तेरे वचन सुन करके तेरा आशीष पाने में मदद कर। मेरे संग पिता तेरा आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है मेरे पिता और मेरे परमेश्वर। प्यारो, आइए हम बाइबल से एक पदस्थल पढ़ेंगे जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। यह मिलता है भजन संहिता 89 का 26 पद में। यहाँ लिखा है, तू मेरा पिता, मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धार की चट्टान है। कितना ही सुंदर वचन लिखा हुआ है। प्यारो, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि परमेश्वर हमारा पिता भी है और हमारा उद्धार का चट्टान है। समस्त सृष्टि का परमेश्वर हमारे निमंत्रण का इंतजार कर रहा है कि वह हमारा सबसे प्रिय मित्र और निकटतम साथी बने ताकि हम उसके विशेष लोग बन सके। दाऊद के लिए परमेश्वर बहुत वास्तविक था। वह अपने निजी अनुभव से जानता था कि प्रभु ने नम्र लोगों का मार्गदर्शन किया और उन्हें अपने मार्ग सिखाए। भजन संहिता 25:9। उसने सीखा था कि परमेश्वर ने अपने लोगों को शक्ति दी और उन्हें शांति का आशीर्वाद दिया। भजन 29:11। उसे यह भरोसा था कि प्रभु ने उन लोगों के लिए डेरा डाला जो उससे डरते थे और उसने उन्हें बचाया। भजन संहिता 34:7 कहता है, दाऊद के लिए वह व्यक्ति मूर्ख था जिसने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। और इस बात को भी लिखता है भजन 53:1, क्योंकि परमेश्वर की करुणा दाऊद के लिए जीवन से भी बढ़कर थी, इसलिए उसने खुशी से भरे होठों से परमेश्वर की स्तुति की। क्योंकि प्रभु उसकी सहायता थे, इसलिए दाऊद स्वर्ग के पंखों की छाया में आनंदित हुआ। भजन संहिता 63:3-7 में हम पढ़कर देख सकते हैं। आज का पाठ का उद्देश्य यह देखना है कि स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर अपने बच्चों का व्यक्तिगत परमेश्वर कैसे है। आदम के समय से लेकर आज तक हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो परमेश्वर को अपने पापों से बचाने वाले, बुराई से मुक्ति दिलाने वाले और दैनिक जीवन में अपने मार्गदर्शक और साथी के रूप में जानते थे। जीवन में परमेश्वर को एक व्यक्तिगत मित्र के रूप में जानने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आइए आज आप अपने आप से पूछे, परमेश्वर मेरे लिए कितना व्यक्तिगत है। परमेश्वर और उसके लोगों के संबंध के विषय में हम मलाकी 3:16-17 में भी पढ़ते हैं। यहाँ हम पाते हैं, यहाँ लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवक करने वाले पुत्र से करे। प्यारो, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर अपने लोगों का सुनता है और उनका रक्षा करता है, उनका ख्याल करता है। इसीलिए जब हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाते हैं तो हमें दूसरों के साथ भी अच्छा संबंध रखना चाहिए। यह हम पढ़ते हैं इब्रानियों 10 का 24 और 25 में। यदि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति सार्थक संगति में एक साथ जुड़ने का हकदार है तो वे ईश्वर के संत हैं। उन्होंने पुराने नियम के समय में ऐसा किया और उद्धारकर्ता के पृथ्वी पर आने के बाद भी ईश्वर इस संगति में उन पर नजर रखता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। लेकिन संतों को अपनी आंखें खुद पर और अपने मामलों पर नहीं टिकानी चाहिए। उन्हें अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को देखना चाहिए और सभी को अधिक प्रेमपूर्ण और अच्छे कामों में अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। संतों को केवल व्यक्तिगत उद्धार के बारे में ही नहीं बल्कि दूसरों के उद्धार के बारे में भी चिंतित होना चाहिए। इसका मतलब है कि बैठकों में ईमानदारी से उपस्थित होना, जहां वे एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं और अपनी एकता और आम आस्था की सार्वजनिक गवाही दे सकते हैं। मसीहों को मसीह जीवन में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दूसरा आगमन, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट आ रहा है। आगे हम परमेश्वर और व्यक्ति के संबंध के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। आइए हम व्यवस्था विवरण 7:6-8 देखें। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों के साथ खाई थी। प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि उन्होंने इसराइल लोगों को एक पवित्र प्रजा होने के लिए चुना, और इसलिए नहीं कि वे लोग गिनती में बहुत अधिक थे, लेकिन जब वे बहुत थोड़े ही थे, परमेश्वर उन्हें चुना और उसे खास रिश्ता बनाने चाहा, उन्हें पवित्र प्रजा बनाना चाहा। और परमेश्वर उनके पूर्वज अब्राहम को बुलाया और उसे अपना मित्र कहा। हम यशायाह 41:8 में पढ़ते हैं, परमेश्वर अब्राहम को मेरा मित्र कहा। यह मित्रता कैसे हुई? ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने पहला कदम उठाया। वह अब्राहम के पास आया, उत्पत्ति 12:1 में हम पढ़ते हैं, और उसे ऊर से निकलकर एक ऐसे देश में जाने का आदेश दिया जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा, परमेश्वर ने कहा। कहानी बताती है कि परमेश्वर और अब्राहम ने एक महान राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्य से एक सज्जन समझौते में प्रवेश किया जो पूरी दुनिया को आशीर्वाद देगा। अब्राहम की मित्रता में कभी कभी बहुत कुछ कमी रह जाती थी। वह कभी कभी सिद्धांत के बजाय डर से काम लेता था, फिर भी उसके मित्र ने उसका साथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। ईश्वर का मित्र बनने के लिए उसकी मित्रता के प्रति प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। इसमें उसकी सुरक्षा, उसकी बुद्धि, उसका मार्गदर्शन और उसकी मित्रता को स्वीकार करना शामिल है। परमेश्वर हमारी देखभाल एक माँ की तुलना में अधिक कोमलता से करता है जो एक पीड़ित बच्चे की देखभाल करती है। ईश्वर उलझन और दुख में एक मित्र है, संकट में एक रक्षक है, उन हजारों खतरों में एक रक्षक है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर और व्यक्ति के रिश्ता के विषय में आगे हम चलिए पढ़ते हैं भजन संहिता 91:2। यहाँ भजनकार अपने निजी रिश्ता को बतलाते हैं और दाऊद राजा यहाँ कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान है और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यदि हम उसके साथ संगति रखते हैं तो हमें प्रभु को सदैव अपने समक्ष रखना चाहिए तथा उसे एक सम्मानित मित्र के रूप में मानना चाहिए तथा उसे अपने स्नेह में प्रथम स्थान देना चाहिए। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने आता है तो उसे परमेश्वर के महानता, उसके पवित्रता को जानना है, उसे महसूस करना है और अपने आप का कमजोरी और कमी को भी एहसास करना है और परमेश्वर से विनती करना है कि हमारे पापों को हटा दे ताकि हम उसके पवित्रता में प्रवेश कर सके। यशायाह का यही अनुभव था जो हम यशायाह 6 अध्याय में पाते हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमें उसके ढूंढना है, यद्यपि वह हमसे दूर नहीं है, परमेश्वर बहुत निकट है। भजन संहिता 145 का 18 कहता है, अगर मसीही लोग ईश्वर को मुख्य लेखाकार के रूप में देखते हैं तो वे उसे अपने बहुत करीब नहीं रखना चाहेंगे। खाता बही जिसमें डेबिट और क्रेडिट शामिल है में बहुत सटीक रिकॉर्ड हो सकता है। बेहतर होगा कि ईश्वर बहुत करीब ना हो। हालांकि अगर ईसाई ईश्वर को अपना मित्र और खुद को उसकी विशेष संपत्ति के रूप में देखते हैं तो ईश्वर की उपस्थिति का विचार हर घंटे में जोश और खुशी लाएगा। प्रभु को पुकारना का अर्थ है उसकी आराधना करना, उसकी शक्ति और हमारी निर्भरता को पहचानना। हमें हमेशा मदद की जरूरत होती है। अपनी जरूरत में हम किसकी ओर मुड़े, हम शायद दूसरे लोगों की ओर मुड़ने के लिए लुभाए जाएं, या यहाँ तक कि जीवन में उच्च पद और आसीन व्यक्ति की ओर भी। लेकिन भजनकार इसके खिलाफ चेतावनी देता है भजन 118 का 8 और 9 में, केवल एक ही है जिसकी ओर हम अपनी गहरी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुड़ सकते हैं और विश्वास के साथ। हमारी चुनौती यह है कि हमारी आराधना सच्चाई से होनी चाहिए, ईमानदारी और एक निष्ठ हृदय से। हमें अपनी वफादारी को कभी भी विभाजित नहीं करना चाहिए या भरोसा और आत्मविश्वास में विफल नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम बैंक बैलेंस, दोस्तों, अपने कौशल या चतुराई पर अपना भरोसा रखने के लिए लुभाए जाते हैं। जो हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उस पर भरोसा करना ज्यादा आसान लगता है, बजाय ईश्वर पर जो अदृश्य और स्पष्ट रूप से अमूर्त है। लेकिन एक ऐसा विश्वास जो अदृश्य चीजों का प्रमाण है, इब्रानी 11 का 1 कहता है, हमें ईश्वर के साथ अपने सभी व्यवहारों में प्रेरित करना चाहिए। तब हम निश्चिंत हो सकते हैं कि जब हम उसे अपने जीवन में अपना रास्ता अपनाने देंगे तो वह हमें कभी निराश नहीं करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह को भी इस पृथ्वी पर सहायता किया जब वह मनुष्य के रूप में यहाँ पर रह रहे थे। यीशु ने परमेश्वर को मेरे पिता कहकर पुकारा और कहता है कि परमेश्वर हमारा पिता भी हो सकता है। मसीह में जब हम उसमें विश्वास करके परमेश्वर के पास आते हैं, हमारा हृदय ईश्वर का घर है, वह द्वार जिसमें मसीह इस सुकून भरे एहसास के साथ प्रवेश करता है कि वह अपने स्थान पर है जहां प्रेम उसे मिलेगा और उसे घेरेगा, जहां वह अपने घर जैसा है। विश्वास और स्नेह के ये टूटे हुए टुकड़े जिन्हें अर्पित करने में हमें शर्म आती है, हमें प्रभु के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि यह अभी भी सच है कि वह अपने लोगों के पास आता है और वे उसे स्वीकार नहीं करते। और यदि हमारी अनेक असफलताओं और विश्वासघातों को याद करके हमारा हृदय हमें निराश करता है तो जकै का भी एक दुखद इतिहास था, फिर भी मसीह ने उसका आतिथ्य मांगा। हमारा घर मसीह अपने और परमेश्वर के बारे में बोलते हुए कहते हैं, हमारा घर, हमारे हृदय को परमेश्वर और यीशु मसीह अपना घर बनाना चाहते हैं। आइए हम भजन संहिता 34 का 8 से 10 में देखें। यहाँ पर हम परमेश्वर की भलाई को पाएंगे। यहाँ कहता है, यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैये को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यह परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की भलाई इस बात से प्रकट होती है कि वह हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की प्रचुर व्यवस्था का अनुभव करना है। ऐसी स्थिति में अनुभव करने से अधिक कुछ भी आश्वस्त करने वाला नहीं है, जहाँ केवल परमेश्वर ही हमारा आपूर्ति का स्रोत हो सकता है। परमेश्वर की भलाई की सराहना करें, अपने आशीर्वादों की गिनती करें, प्राकृतिक लाभों, उपहारों और सुखों को हल्के में ना लेना सीखे। उन सभी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे। बाइबल या यीशु मसीह के सुसमाचार को तुच्छ ना समझे। किसी के प्रति लापरवाही का रवैया ना अपनाएं। भजनकार का प्रश्न स्वयं से पूछे, मैं यहोवा को उसके सभी उपकारों के लिए क्या दूं? उसका उत्तर पाने के लिए अनुग्रह की तलाश करें। मैं उद्धार का प्याला लूंगा और यहोवा के नाम को पुकारूंगा। हे यहोवा, मैं सचमुच तेरा सेवक हूँ। मैं यहोवा को अपनी मन्नतें अब पूरी करूंगा। भजन संहिता 116:12। प्यारो, जब परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, हमारे लिए इतना कुछ देता है, तो हमारा हृदय उसके प्रति धन्यवादी होना चाहिए और उसका महिमा और गौरव करना चाहिए। हम भी दुनिया के लिए आशीर्वाद का माध्यम बनकर परमेश्वर की भलाई का जवाब दे सकते हैं। देने और प्राप्त करने के परमेश्वर के नियमों में से एक यह है कि जो लोग दूसरों के साथ अपने द्वारा प्राप्त आशीर्वाद को साझा करते हैं, उन्हें जल्द ही हर अच्छे और उत्तम उपहार के दाता से अतिरिक्त आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। आज हमने परमेश्वर के अपने लोगों के साथ संबंध, व्यक्ति के साथ परमेश्वर के संबंध, परमेश्वर और उनके लोगों की निकटता और उसकी भलाई के बारे में सीखा है। प्यारो, जब गरीबी के कारण एक इब्री को अपनी पैतृक संपत्ति या विरासत से अलग होना पड़ा और खुद को दास के रूप में बेचना पड़ा, तो उसे और उसकी विरासत को छुड़ाने का कर्तव्य उस व्यक्ति पर आ गया जो उसके सबसे करीबी रिश्तेदार था। यह हम पढ़ते हैं लेव्यवस्था 25:25 और 47-49 में और रूथ 2:20 में भी। इसलिए हमें और हमारी विरासत को जो पाप के कारण खो गई थी, छुड़ाने का काम उस पर आ गया जो हमारा निकटतम रिश्तेदार है। हमें छुड़ाने के लिए ही वह हमारा सगा बन गया और वह यीशु मसीह था। पिता, माता, भाई, मित्र या प्रेमी से भी अधिक निकट हमारा उद्धारकर्ता प्रभु मसीह है। मत डर, वह कहता है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे तेरे नाम से बुलाया है, तू मेरा है। क्या ही भला प्रतिज्ञा है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया हमारा निकटतम मित्र, निकटतम रिश्तेदार होकर के कि वह हमें पाप से बचाए, पाप से छुड़ाए। इसलिए आइए हम उसके पुकार को सुने, उसके पास आए और पाप से बचाए जाए। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, आज के दिन के लिए, आज के संवाद के लिए, कि तू हमसे प्रेम करता है, हमसे अति भलाई का व्यवहार करता है। तू हमारा परमेश्वर है और तू हमारा पिता भी है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तेरे पास आ सकते हैं और तेरे राह में चल सकते हैं और उद्धार पा सकते हैं। पिता परमेश्वर, तू हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाना चाहता है। उसके लिए हम सब उनको तैयार कर, मेरे श्रोताओं को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।